मन एव मनुषाणाम कारणम बंध मोक्ष हो, आपका मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। जब विषय विकारों में नश्वर चीजों में सुख बुद्धि से आपका मन लगता है तो आपको हल्की योनि नीच योनियों में जाना पड़ता है। जो वैर लेकर मरता है दूसरी बार सांप के घर उसको अवतरित होना पड़ता है, वैर का भाव ज्यादा है। और मांस मदिरा की मांस की वृत्ति ज्यादा है तो गीद के या शेर के यहां उसका जन्म होता है। पुत्र परिवार में मोह है तो शुकर कुकर के यहां जन्म होता है। अगर आदमी बाहर से कहीं अपमानित और दुखी होकर आया है तो घर में चिड़चिड़ियापन और गुस्सा दिखाएगा, गिरा पहाड़ पर और घर में आकर खील ठोकता है। अपमानित तो बाहर हुआ लेकिन घर पर घर वालों पर आकर रुबाब मारेगा, गुस्सा दिखाएगा। ऐसे ही जो हल्के कर्म करके हल्की योनियों को पाकर नरकों में जाते हैं और वे जब नरकों की यातनाएं पूरी करके मनुष्य देह में आते हैं तो ये देवी भागवत के आधार पर आपको कथा सुना रहा हूं। भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई कि अश्वपति की कन्या सावित्री को यमराज ने ऐसा कहा। वट सावित्री का आज पर्व है, व्रत दिवस है, तो राजा अश्वपति भगवान की आराधना किए, मां सरस्वती की आराधना किए। तो आपका मन सरस्वती की आराधना करता है तो वही चैतन्य सरस्वती में अंदर है, वो आकर्षित होकर प्रकट होता है। और आप आराधना करते हैं शंभ सदाशिव की तो शिवजी प्रकट होते हैं, आप आराधना करते झूलेलाल की तो झूलेलाल प्रकट होते हैं। आप जिस मित्र को चाहते तो उस मित्र के दिल में भी आपको मिलने की वृत्ति हो जाती। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। तो भगवान नारायण ने नारद जी को कहा कि अश्वपति ने मां सरस्वती की आराधना की। नियमित तदाकार होकर आराधना करने से मां सरस्वती प्रकाश पुंज तेजोमय रूप में प्रकट हुई। राजा अश्वपति ने पत्नी सहित अर्घ्यपाद से उस मां सरस्वती की पूजा की। मां सरस्वती कहने लगी कि राजन, तुम्हारी पत्नी किस मनोवांछा से मेरा पूजन करती मुझे पता है। जिसका मन संकल्प विकल्प रहित होता है अथवा जो अपने मन का अनुसंधान करता है वो दूसरे के मन की इच्छा जान जाता है। वो देवताओं में भी शक्ति होती है, योगियों में भी होती है और सच्चे पुरुषों में भी होती है, आत्मरामियों में भी होती है। जैसे सेल्समैन को पता चल जाता है कि ये कपड़ा खरीदने वाला ग्राहक है कि खाली डिजाइन देखने वाला है, इतना तो रात दिन का उसका अभ्यास होता है। इन ये अभ्यास और बात है और मन की शुद्धि से पता चलना और बात है। तो सरस्वती का तो अंतःकरण शुद्ध होता ही है कि तुम्हारी पत्नी कन्या प्राप्ति के लिए मेरी उपासना करती और तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। राजन, इस जगत में जो जिस इच्छा से कष्ट सहता है उसको उसी इच्छा पूर्ति की सिद्धि होती है। सारी शक्तियां व्रत उपवास और कष्ट सहने से ही निखरती है। पीड़ोद भवत भवेद सिद्धि ही, पीड़ा सहने से सिद्धि होती है। तो जो जिसके लिए चल पड़ता है और कष्ट से घबराता नहीं तो उसकी शक्तियों का निखार होता है, निखरती। और जो कष्ट से घबराता है तो शक्तियों का निखार नहीं होता है। तो राजा अश्वपति, तुमने कष्ट सहे हैं, व्रत रखे हैं, नियम पाले हैं, तो तुम्हारी इच्छा पुत्र की है और तुम्हारी पत्नी ने भी व्रत रखे कष्ट से उनकी इच्छा कन्या की, और मैं तुम दोनों को दोनों दूंगी। मां सरस्वती ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार सरस्वती वरदान देकर अंतर्धान हो गई। राजा अश्वपति के घर समय पाकर सरस्वती के शुभ संकल्प से कोई शुभ अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाली आत्मा आई और वो बड़ी सुंदर सुहावनी सात्विक वृत्ति वाली कन्या दिखी। मां सरस्वती के कृपा से कन्या मिली है तो राजा ने नाम भी उसका सरस्वती रखा। अब वह कन्या राजा अश्वपति की सावित्री, उसके विषय में एक तो देवी भागवत में कथा आती है, दूसरी एक पौराणिक प्रचलित कथा भी है। मैं दोनों को जोड़ के तुमको सुना देता हूं। एक दिन राजा सुबह घूमते सादे वेश में प्रजा का हाल परखने गए। तो सावित्री भी उनके पीछे हो ली, राजा को पता नहीं था। राजा घूमते घूमते भोर होने को था, सूर्योदय होने का ही था। देखा कि सूर्योदय होने को है, अब हो ही रहा है, फिर भी एक कुम्हार मजे से सोए है प्रांगण में, खटिया आया मजे से। राजा को लगा कि व्यापारी लोग भी जल्दी बही खाते अथवा पूजा पाठ में लगते, ब्राह्मण लोग यज्ञ याग में लगते, साधु संत भी सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, सबको कुछ न कुछ हापा धापी है, ये कुम्हार बड़े निश्चिंत है, ये बड़े भागशाली हैं, कोई फिक्र नहीं, अभी सूर्योदय हुआ है फिर भी सो रहे हैं। तो गांव की जो दीवार थी उसमें काला बोर्ड जैसा था, राजा ने वहां लिख दिया, सुखे सुवे संसार मां भाग्यवंत कुंभार, सुखे सुवे संसार मां भाग्यवंत कुंभार, चिंता राखी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। चिंता को तो चाकड़े पे रख दिया, धन्य धन्य अवतार। सावित्री अश्वपति से भी ज्यादा बुद्धिमान थी, क्योंकि सत्य मां सरस्वती का प्रभाव था। सावित्री को पता नहीं था कि ये अश्वपति लिख के गए पिताजी, उसने देखा कि ये किसने लिखा, तो बड़ी गलती लिखा है इन्होंने, इसे तो आलस्य बढ़ जाएगा, जो देर तक सोता रहे वो भाग्यवान है, ऐसा अगर राज कोई लिखता है तो प्रजा आलसी हो जाएगी। प्रभात को उठने से ही बुद्धि बल बढ़ता है, आरोग्य के कण बढ़ते हैं, सूर्योदय से पहले उठकर घूमे टहले तो स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रातःकाल की वायु को सेवन करत सुजान, तांते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि हो तो बलवान, और ये आलसी टट्टू होके सो पड़े हैं, और इनके लिए धन्य धन्य लिख दिया, वो धन्य लिखने वाला कोई ऐसे ही है। ओ, सावित्री ने लिखा, धन्यवाद लखनार ने, लिखनार ने को लिखने वाले को धन्यवाद है, धन्यवाद लखनार ने खरे खरो कुंभार, धन्यवाद लिखने वाले को, धन्यवाद लिखनार को, सचमुच में कुंभार, जो घर नार सुलक्षणी वो सुख से सोनार, वही सुख से सोता है। राजा घूमकर घर आए, लेकिन उसी रूट से, और सावित्री थोड़ा गई पीछे पीछे फिर वापस आई, तो राजा का चेहरा जरा थोड़ा सा खिन्न था, क्योंकि वो अपने दोहे के नीचे कोई फटकार का दोहा लिख गया कि मेरे को कुम्हार बना के गया। तो सावित्री ने कहा कि पिताजी आप हम तुम आज तो तुम्हारे पीछे पीछे आए थे, कहां तक आए थे? अरे पिताजी हम तो पीछे पीछे आए थे, फिर एक कुम्हार वाड़े की दीवार देखी और किसी मूर्ख ने कुम्हारों के लिए लिखा तो फिर मैं उसको फटकार के फिर आपका पीछा पिताश्री मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गई। बोले अच्छा तो दोहा तूने लिखा? कि हां पिताजी, पहले कोई मूर्ख लिख के गया था, सुखे सुवे संसार मां भाग्यवंत कुंभार, चिंता राखी चाकड़े धन्य धन्य अवतार, तो मैंने उसको फटकारते हुए दोहा लिखा, धन्यवाद लिखनार ने खरे खरो कुंभार, जे घर नार सुलक्षणी ते सुखे सुनार, वो सुख से सोता है जिसके घर सुलक्षणी स्त्री हो, सात्विक मति वाली हो। इसमें दो अर्थ है, एक तो भौतिक दृष्टि से पति पत्नी, पत्नी सात्विक पवित्र हो जिसके घर में, वो निश्चिंत रहता है सुखी रहता है। दूसरा अर्थ है कि वो बुद्धि जिसकी सात्विक हो पवित्र हो दान पुण्य सेवा शुभ में, वो सुख से रहता है। धन से सुख का कोई संबंध नहीं, धन से सुविधा मिलती है, बुद्धि शुद्ध है तो आदमी सुखी रहेगा, नहीं तो धनवान अमेरिका में बहुत सड़ रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, स्नायु रोग के शिकार होकर 2 करोड़ लोग पड़े, और जिनके पास धन सुविधा होती है उनके स्नायु में भोग अथवा किसी कारण से कमजोरी आ जाती, लेकिन बुद्धि बढ़िया है तो स्नायु मजबूत रहेंगे, और स्नायु कमजोर हो गए तो बाकी क्या, पैरालाइज भी उसी से होती है, दूसरी बीमारियां भी उसी से होती है, और आदमी थका थका महसूस करता अपने को, और अकाल मृत्यु भी स्नायु की कमजोरी से ही कहा गया है। सुलक्षणी स्त्री होने से आदमी सुखी हो जाता है। अब देव योग के सत्यवान कुमार थे, तब उसके राज्य पर चढ़ाई, पिता पर चढ़ाई कर दी, पिता सूरदास हो गए, राजकुमार छोटे थे, शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी, तो नेत्र की ज्योति चली जाए जिस राजा की, उस राजा का राज्य कितना रहे। दाई ने बच्चे को बचाने के लिए नगर छोड़कर भागी और जंगल में उस राजकुमार को, सत्यवान को, भील परिवार मुखिया जो भील था उसको संतान नहीं थी, उसको दे दिया बेटा, बताने के सत्यवान है फलाना है, लो भाई मेरे पास बालक है और मैं बुढ़ी हूं वृद्धा हूं, आप इसको गोद ले लीजिए। भील के घर राजकुमार रहते रहते समय पाते वो बड़ा हुआ तो भील की प्रवृत्ति करने लगा, जैसा मन में वातावरण मिलता वैसा सेटिंग हो जाता है, और वो अपने को भील मानने लगा, लकड़हार हो गया, समय पाकर जिस मुखी भील को पिताजी मानते थे वो उसके पिताजी मर गए, सचमुच में तो उसका पिताजी राजा था लेकिन वो भूल बैठा, अपने पिता का पता नहीं था, तो भील मर गया तो रोया कि मेरे पिताजी मर गए, भीलन मर गई तो रोया मेरी मां मर गई, अब मैं अनाथ हो गया, और भील बस्ती में अपनी झोपड़ी वोपड़ी बना के वो रहने लगा। देव योग से लकड़ों का भारा जो था वो रोज राजमहल में रसोई के लिए वो डाल के आता था। पिता को जब गुस्सा लगा कि ये मेरे को कुम्हार लिख दिया, और सुलक्षणी स्त्री होती है वही, उसी का पति सुख से रह सकता है, अभी तेरे को दिखाता हूं। तो सत्यवान जो लकड़े का भारा फेंकता है तो सत्यवान को बुलाकर ब्राह्मण को बुला के 3.5 फेरे फिरा दिए, जा अब देखे तो कैसे इसको सुखी रखती। वैसे आदमी तो सज्जन था लेकिन ईगो भी तो रहता है, ऐसा नहीं कि सज्जन में ईगो नहीं रहता है, सज्जन में ईगो रहता है तो सज्जनता का भी ईगो आ जाता है, दुर्जन में ईगो रहता तो दुर्जनता का भी ईगो, जेल में जाने का भी ईगो होता है, मैंने 3 खून किए ये भी ईगो होता है, ऐसे मैंने 3 मंदिर बनवाए ये भी ईगो होता है। जो भक्त होता है सज्जनता के साथ भक्ति है तो फिर बोले भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ने हमको ये मौका दिया, मैं तो क्या लाया था कुछ नहीं और ले जाऊंगा कुछ नहीं, भगवान ने मेरे को अवसर दिया, भक्त भगवान की कृपा मानेगा, संसारी फिर अपना थोपेगा। महाराज सत्यवान घबराने लगा कि ये क्या, राजा कहीं मेरी मखोल तो नहीं उड़ा रहे, कहीं मुझे फांसी तो नहीं भेजेंगे, अपनी कन्या दे रहे हैं इतनी सावित्री जैसी सुज्ञा और मैं लकड़हार, अब इसको पता नहीं मैं राजकुमार हूं और ये राजकन्या है, विधाता जो करते ठीक करते वो बेचारे को पता नहीं, वातावरण का असर। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी ने मुझे आपके हवाले किया कन्यादान दिया, और शास्त्र कहते हैं जो अपनी कन्या को सुयोग्य सत्पात्र को दान करते हैं उसे कन्यादान का फल होता है, अगर कन्या भगवान के रास्ते जाती है तो भगवान के निमित्त भगवान को दान कर दो जयराम जी की, और लवर लेके भाग जाए इसलिए इससे तो साध्वी हो जाए तो अच्छा है जयराम जी की, अथवा संसार के दलदल में गिर जाए उससे तो भक्तानी हो जाए तो अच्छा है। तो कन्या दान किया, और जो कन्या को कुछ देकर ये दान करते तो ऐसा ऐसा पुण्य कहा गया है, और आप घबराई नहीं चलिए। सत्यवान उसको लाया और कहा कि तुम्हारा राजमहल कहां और ये मेरा भीलवास में झोपड़ा कहां। सावित्री ने कहा राजमहल में भी शरीर में नींद आएगी तो वही अवस्था में पहुंचता है आदमी, और झोपड़े में भी सोएगा तो नींद में उतना ही सुख मिलता है। खाली अहंकार में होता है कि मैं राजमहल में सोता हूं, और अहंकार ये कल्पना करता है हाय रे हाय मैं झोपड़े में सोता हूं। अहंकार से ही सुख दुख की कल्पना होती है, वास्तव में तो शरीर को पता ही नहीं कि राजमहल है कि ये झोपड़ा है। अपने मन की कल्पना ही राजमहल और झोपड़ा दिखाती है। ये सारा जगत मन कल्पित है। यत्र यत्र प्रपंच तत्र तत्र सृष्टि, यत्र यत्र मन विक्षेप तत्र तत्र प्रपंच, जहां जहां मन का पूर्णा जैसा वहां वहां दुनिया ऐसी। तो आप सुकड़ो नहीं डरो नहीं। सावित्री भोजन बनाती और वो लक्कड़हार ले जाता, लक्कड़हार आटा सब्जी आदि कमा लाता और सावित्री घर काम करती। देव की दी हुई प्रसादी अथवा पूर्व के संस्कार मनुष्य को बड़ा साथ देते हैं। अपने किए हुए कर्म मनुष्य पशु पक्षी सब भोगते हैं। ये छोटी छोटी योनियों आती है तो छोटे कर्मों का फल छोटी योनिया। कोई वृक्ष बनकर पीड़ा सह रहे हैं तो कोई सुअर और सूकर होकर भटक रहे हैं, तो कोई मनुष्य हमें बड़ा परिश्रम करके दुखी होकर हाय हाय करके शराबी कबाबी होकर दुख तो सह रहे हैं मजूरी का, लेकिन जो पैसे मिलते फिर शराब पीते तो भविष्य भी ऐसे ही बना रहे हैं। तो सारा खेल कर्मों के लीला का है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता, अपने किए हुए कर्म भोगता है। तो पवित्र आत्मा थी सावित्री, सरस्वती के संकल्प से पवित्र आत्मा आई थी। देव योग से घूमते घामते नारद जी उस भील जंगल बस्ती, भीलों की बस्ती से जंगल में पसार हुए। तो सावित्री ने दूर से प्रणाम किया। नारद जी ने देखा कि दूसरी भिलन तो बावो जाए हैं करती है और ये बड़े आदर से प्रणाम करती है, कोई साधारण आत्मा नहीं बड़े कुल की लड़की है। हाव भाव उठ बैठ प्रणाम और भाषा से पता चल जाता है कि ये हल्का प्राणी है कि ऊंचा है, हल्के संस्कार वाला जीव है कि ऊंचे संस्कार वाला। तो नारद जी ने उसकी ऊंचाई देखी और नारद जी निकट गए, ललाट देखा, हाथ देखा, अरे तू तो राजकन्या लग रही। उसने अपनी बात सुनाई कि महाराज आप सत्य कहते हो, और मेरे पिताजी ने नाराज होकर उसके पहले सावित्री ने एक संदेशा पा लिया था। वो दहा जब छोड़ गई थी सत्यवान को तो सत्यवान का नाम और सत्यवान के पिता का नाम और फलाने राज्य के तुम राजकुमार, वो धार लिखकर उसके गले में ताबीज डाल के गई थी। अब ये भीलों के साथ रहने से न पढ़ा लिखा न आगे का कुछ बुद्धि गई। तो सत्यवान सोया था तो एक दिन उसके गले से वो ताबीज निकाल के सावित्री ने पढ़ लिया कि अरे ये तो सत्यवान फलाने राजा का राजकुमार है। भले पिता ने लक्कड़हार समझ कर दे दिया लेकिन प्रारब्ध तो राजकुमार के साथ ही तो राजकुमार मिले। फिर ताबीज ज्यों का त्यों डाल दिया गया। नारद जी को बताया कि ये भील बस्ती में तो रहती हूं लेकिन पति भील रूप में दिखते हैं, इनको पता नहीं है, और कोई समय आएगा तब, अभी जो अंतरात्मा कहता है महाराज मैं उनकी सेवा करती हूं। महाराज पत्थर की प्रतिमा में अथवा ये कबर मुजायर में भी श्रद्धा रखते तो उनको भी लोगों को कुछ पुण्य और फायदा होता है, तो जीवित पति में भगवान की भावना करके उनकी सेवा करने से क्यों न लाभ होगा। जयराम जी की। वैश्या का पुत्र, वैश्या का पुत्र समय वैश्या समझते पैसे देके किसी भी आदमी से रहे, वैश्या का पुत्र भी अपनी मां में अगर मातृभाव करके उसकी सेवा करता है तो वैश्या के प्रभाव से नहीं तरेगा, उसकी श्रद्धा के प्रभाव से उसको फल मिलेगा, वो तरेगा। मां कैसी है वो मत देख, लेकिन मेरे लिए वो मां आदि शक्ति है। बाप कैसा है क्या करते वो मत देख, मेरे लिए पिता देव है, गुरु मेरे लिए देव है। तो पीपल का वृक्ष किसने लगाया वो मत देख, लेकिन पीपल में मेरे परमात्मा की सत्ता और फेरे फेर और धागे बांध, ताकि तेरे जन्म तू चक्कर काट तो तेरे जन्म मरण के चक्कर कट जाए। सावित्री वृक्ष, वट वृक्ष की पूजा करी जाती, पीपल की वृक्ष। तो मनुष्य सत्य संकल्प है, संशय न करे दृढ़ करे तो सत्य संकल्प है। लेकिन इस मनुष्य के पीछे तीन दोष लगे हैं, एक शोक, दूसरा भय, तीसरा मोह। शोक बीती हुई बातों का होता है। एक आदमी भोजन कर रहे थे, कढ़ी का चम्मच मुंह में आया और टप टप आंसू बहाने लगे। भाई क्यों, कोई अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बोले मुन्ने की माँ याद आती है, वो भी ऐसी कड़ी बनाई थी बबलू की माँ याद आती है, वो भी एक बार ऐसी कड़ी बनाई थी उसने। अब उसको मरे हुए 13 साल हो गया, अब तो वर्तमान के सुख को बीती हुई घटना में शोक में क्यों दुखी कर रहे यार? वो भी मेरा जमाना था, ऐसा धंधा चलता था, ऐसा चलता था, अभी तो खाली 5,500 मिलता है। अरे मूर्ख नंदन, 1200 में लोग गुजारा कर रहे, तेरे को 5,500 मिल रहा है, तू शुक्र कर। और पहले को याद करके काय को परेशान होता है? दूसरा होता है भाई, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो भय के कारण पेड़ पे बैठे हुए बंदर शेर के मुंह में आ जाते, चीते के मुंह में। जंगल में शेर ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो धाड़ता है तो चीखते चीखते उनकी नसें कमजोर हो जाती है, बंदर गिर जाते और शेर उन्हें उठा ले जाते। भय के कारण ही कई प्राणी इधर उधर करके शेर के मुंह में आ जाते हैं। छापा पड़ता है सूरत में तो धड़कने चलती है बंबई तक, छापा पड़ता है भागा मोड़ा भागल में तो वरिया रोड पर धड़कने चालू हो जाती। इनकम टैक्स सेल टैक्स का दरोड़ा पड़े सांता क्रूज में तो बोरेवली में धड़कने चालू हो जाती। तो ये भय भविष्य की कल्पना में। तो शोक, भय और मोह, मोह वर्तमान में जो वस्तु मिली है वो पड़ी रहे, बनी रहे। अब जो मिला है पहले नहीं था, जो मिला है वो पहले नहीं था, तब मिला तभी तो बोलोगे। अब ये वस्तु मेरे को मिली तो पहले नहीं थी, मिली है। जो पहले नहीं होता है वो बाद में भी नहीं होता है, ये पक्का मान लो। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं हो जाएगा। अब उसका सदुपयोग करके भगवान को धन्यवाद दो तो तुम्हारी मर्जी, और उसको चिपक चिपक के और डंडे खाकर छोड़ो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। ऐसा कोई धरती पे माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, चाहे सेठ साहूकार राजा रंक साहूकार फकीर अमीर, ये तो क्या दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने वाले पीर पैगंबर जैसे भी सब छोड़ के गए, तो अपना कब तक तुम संभाल रखोगे? तेरा तो कुछ है नहीं, देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा क्या कहे, शरीर भी साथ न आए। तेरा तो कुछ है नहीं, देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा क्या करे, शरीर भी साथ न आए भैया। लेकिन वो जो मोह है वो आसक्ति करा देता है, और मरते मरते भी मेरे छोरे का क्या होगा? अरे कई जन्मों तक किसी का छोरा था, कई जन्मों तक किसी का बाप था, किसी का बेटा था, अभी वो उस विश्व का बाप उसका है। छोरी का क्या होगा, छोरे का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? अरे तू अभी अपने साथ, अपने पास जो है, बाहर नहीं दूर नहीं, उसमें मन लगा तो तेरा मंगल होगा, नहीं तो भटक जाएगा भाई। एक किसान बीमार पड़ा और शरीर ठंडा हो गया, पटेल काका आता, मैसाणा पटेल, ते काकी जरा हीरा बाट जाम, जरा होशियार, अजमा डालकर सरसों के तेल में और काका के पैरों में रगड़ मारी, थोड़ी गर्मी आई, कि मारू बहिरू क्यों स बोले आ रही तुम्हारा छोकरा क्यों है मेरे छोकरे का है छोकरों को बुलाया बोले ये चारों चार खड़े तीन तो शादी सुधे एक कुंवारा है और ये तीन बहू बोले वो यहां से तो रसोड़ा में बलाड़ी दूध न बगाड़ा अन छोकरा ओय से तो पछी खड़ा में ढोरो बधु बगाड़ा नहीं खेतर में चियो गयो ओ खड़े खेत न बिगड़े दुकान न बिगड़े दूध न बिगड़े लेकिन तेरी जिंदगी बिगड़ रही सारा जीवन जो मिला है उसी को मेरा माना लेकिन जिससे शरीर को मैं मानता था वो परमात्मा तेरा है बाकी सब खेल है सपना है भ्रांति है तेरा तो कुछ है नहीं देखा ठोक बजाए मेरा मेरा क्या करे शरीर भी साथ ना आए जब शरीर साथ नहीं आएगा तो बैंक बैलेंस आएगा क्या हाँ किया हुआ पुण्य कर्म की वृत्ति साथ में रहे शुभ तेरा अंतःकरण को शुभ बनाएगा अशुभ अशुभ बनाएगा मर्जी तेरी सतयुग गया तो सत गया त्रेता गया तो तप गया द्वापर गया तो यज्ञ गया दानम केवलम कलियुग ये न केन प्रकारेण दान दीन किन कल्याण विद्या का दान मान का दान जो एक मंदिर बना लेता है लेकिन किसी से बात करता तो उसके दिल मंदिर को ठेस पहुंचाता है तो उसके मंदिर का इतना पुण्य नहीं होता मंदिर न बनाए तो न बनाए लेकिन लोगों के दिल मंदिर को संतोष और शांति देता है तो श्री हरि उस पर संतुष्ट रहता है मंदिर बनाना पुण्य कहा गया है पोखरा बनाना बड़ा पुण्य कहा है वो सहस्त्र वर्ष स्वर्गीय सुख भोगता है मंदिर बनाने वाला पोखरा बनाने वाला गोदान करने वाला यज्ञ तप लेकिन उससे भी हरि कीर्तन जो करता है तो हरि कीर्तन करता करवाता है भगवान कहते वो तो मेरा आत्मा है उसके लिए 100 वर्ष या 1000 वर्ष स्वर्ग या वैकुंठ क्या होता है मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे ओदो संत अति मोहे प्यारे अब वो नारद जी देख रहे हैं उसका सत्यवान का भूतकाल ये तो राजकुमार है भविष्य काल देख रहे हैं ये तो आने वाले आज के दिन साल के बाद इसको सांप काटेगा चंदन के वृक्ष में छुपा सांप इसको काटेगा लकड़ी करने जाएगा चंदन का वृक्ष मिलेगा और चंदन के वृक्ष से वो चिंता सांप इसको चप बेटी तूने बहुत कष्ट सहा अभी भी तेरा प्रारब्ध बड़ा दुखी है बोले महाराज भविष्य के दुख को याद करके भय करना बुद्धिमानों के लिए उचित नहीं है और भविष्य में सचमुच दुख आना होता तो आप जैसे संत के दर्शन नहीं होते दुख टल जाएगा तभी तो दर्शन हुए भगवान के प्यारे संत मिलना ये दुखों को पापों को शोकों को काटने का समझो एक वरदान मिला है मेटत कठिन को अंक भालक है भाग्य के कुअंक मिटते संतों के दर्शन से भक्ति से भगवत भक्ति से नारद जी ने देखा कि इसने तो बांध लिए पैर बात तो सच्ची कहती अच्छा तो बेटा ऐसा कर तेरे को मैं मंत्र देता हूं भगवत मंत्र जपने से बार बार जपने से भगवत प्रीति होगी जिसके हृदय में भगवत प्रीति होती है तो भक्ति आती हृदय में भक्ति क्लेश नाशिनी अहम विसर्जक अशुभ निवारणी है शुभ प्रदायनी है भगवान की भक्ति तेरे हृदय में प्रकट होगी और मंत्र देता हूं ओघड़दानी शिव जी का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और तुझे प्राणायाम की विद्या बताता हूं और रोज थोड़ा ध्यान करना होनी अवश्य वो तेरा पति को सांप काटेगा और पति तेरा मरेगा सही लेकिन फिर तू ये करेगी तो तेरा नाम सावित्री अमर हो जाएगा कैसी युक्ति है बाबा लोगों के पास मंत्र दिया मंत्र आप जपते हो तो जैसे डायनामो घूमता है ऊर्जा बनती है से वही का वही मंत्र जपते हैं तो अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा बनती 84 नाड़ियों में 26 उपत्काओं पे 7 केंद्रों पे 5 कोशों पर उसका प्रभाव पड़ता है सावित्री वृक्ष रोज जप भी करती है, ध्यान करती है, प्राणायाम करती है, उससे प्राण सूक्ष्म हुए और सूक्ष्म शरीर निकालने की विद्या नारद जी बता गए। दिन बीतते गए, वो गिनती गई, सप्ताह, महीना, दो महीना, तीन महीना, 11 दिन और 28 दिन हुए, 29 हुए, आज 30वां दिन है। आज की तिथि के दिन ही मेरे पति को सांप काटेगा। सावित्री ने कहा कि नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मुझे आज वन विहार करने की इच्छा है। ऐसा नहीं कहते कि मुआ तू मरी हेडबानो छे, हूं तन बचाव आगू छू, तेरी मौत है, मैं आज तुझे बचाने आ रही हूं, ऐसा नहीं कहा। भगवत बुद्धि से उसकी सेवा करते। उसने कहा, देवी तूने कुछ नहीं मांगा तो इनकार तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन तेरे कोमल कदम और कंटीला जंगली मुझ कठियारे के पीछे तू क्या दखल है, तू घर में ही रहे। बोले, देखो नाथ, पति परायणा स्त्री को तो पति के व्यवहार में ध्यान देना चाहिए मंत्री जैसा। घर में घर ऐसा सजा कर और व्यवस्था रखनी चाहिए कि लक्ष्मी जैसा। कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता, मां जैसे प्रेम से भोजन कराती है, भोजन कराते समय मातृ हृदय करे, प्रेम से स्वास्थ्य प्रद खिलाए। लड़का मांगता फिर भी मां देखती कि इससे वो बीमार होगा, इसको कफ है, लींट निकल रही, और वो चावल मांग रहा है तो मां नहीं देगी उसको, तो दलिया खिलाएगी या तो रोटी खिलाएगी। आप खूब गर्मी और रोटी मांग रहा है, लहसुन मांग रहा है तो ना ही देगी उसको, तो फिर और कुछ देगी, छाछ देगी, भैंस देगी। तो मां स्वास्थ्य का ख्याल करके प्रेम से देती है, ऐसे ही पत्नी भी भोजन के वक्त ऐसा ख्याल रखे कि ये खाने के ऋतु अनुकूल है, ऋतु प्रतिकूल है, इनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, अनुकूल है। जैसे दाड़म का रस है तो बहुत लोगों के लिए अनुकूल होता है, दाड़म आम है तो खट्टा आम ना हो, मीठा आम हो तो पौष्टिक होता है, कई रोगों को भी निवारने का काम भीतर करता है आम, आम का रस। केरी खावानी सीजन हो त्यां सुधी बराबर ठबारे राखवानी। जय श्री कृष्ण। तो कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता, गृहेषु लक्ष्मी। तो अब मैं तो कार्य में मंत्री जैसी, तो आप रोज माल लेने जाते तो आज तो मैं भी आऊंगी देखने। सत्यवान इनकार नहीं कर सका, रो गई, मन में तो भगवत मंत्र था और पता था, नारद जी ने बताया कि बराबर आज के दिन सांप काटेगा। और जो डाले पे चढ़ के और वृक्ष को काटा तो वृक्ष में छुपे हुए सांप ने पकड़ लिया, वो जल्दी से पति को उतार के अपने गोद में उसका सिर रखा और पति के शरीर के और अपने के दृष्टिपात करके मंत्र जप के एक रेखा बना दी। यमदूत ने यम पास डाला लेकिन उनका यम पास काम न करे। ये भाई कुछ मंत्र शक्ति का उपयोग कर रही। अच्छा, तुम इस अपने पति मृतक पति को छोड़कर दूर चली जाओ। उसने कहा, मैं तो नहीं दूर जाऊंगी, मेरे पति देव है, इनकी ये मृत्यु ही अकाल मृत्यु तुम्हें तो। यमराज की यमपाश जब व्यर्थ गई तो यमराज के पास गए यमदूत। यमराज स्वयं आए और यमराज ने देखा कि इसका आभा मंडल है, प्रभाव है। अभी कैमरा डेवलप हुए कि आदमी का फोटो निकालते और उसकी आभा का चित्र आता है। कलकत्ता में हमारे पास वो कैमरा वाले आए और आभा मंडल का फोटो, बोले 576 आदमियों के लिए, लेकिन ऐसी आभा बापूजी ऐसी आपकी है कि जो भी आपको देखेगा बस खींच के आएगा, ऐसा आध्यात्मिक आभा बड़ा पावरफुल है। तो स्थूल आंखों से नहीं दिखती है, कभी कभार कोई भक्त ध्यान से बैठता है तब तो कभी कभार दिखती है। अपने देवी देवताओं के पीछे जो सफेद सफेद मस्तक के पीछे सूर्य की नाई चंद्रमा की नाई है, ये वास्तव में होता है, वो सात्विक पुरुष है ना, सात्विक आभा का आभा मंडल होता है। यमराज ने कहा, पुत्री अब तुम चली जाओ, हमारे सृष्टिकर्ता का जो नियम है उस नियम में तुम बाधा ना बनो, इसका आयुष्य पूरा हो गया और तुम इसको दूर रख के चले जाओ, हमें अपना काम करने दो। देखा कि अब दूत होते तो मैं जिद किया, लेकिन ये स्वयं यमराज है, श्रेष्ठ पुरुष जब कोई बात कहता है तो फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए, अपने कल्याण के लिए उनकी बात आदरपूर्वक सुननी चाहिए, हो सके तो मान लेनी चाहिए। सावित्री बुद्धिमान थी, पति को छोड़कर थोड़ी दूर चली गई। यमराज ने उसका सूक्ष्म शरीर निकाला, वो अपना दूर बैठ के ध्यान करके सूक्ष्म शरीर निकाला, आगे यमराज और पीछे सावित्री उसके पति के शरीर। जो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार गए तो यमराज ने देखा कि तू कैसे आ रही पीछे पीछे, तेरी गजब की तपस्या है भाई, कोई वरदान मांग ले और चली जा। बोले मेरे पिता को बेटे नहीं और मेरे ससुरा को आंख नहीं, मेरे ससुरा की आंखें हो जाए और उन्हें खोया राज्य मिल जाए और मेरे को भाई हो। बोले एवं मस्तु जा पुत्री जा। और आगे गए, देखा कि आ रही, फिर क्यों आती है? बोले ये तो मेरा ससुराल का घर और मायके घर संवार है, मेरा घर तो आपके साथ है, उजड़ा हुआ मेरा घर। बोले ये तो पति, और कुछ मांग ले। तो बोले ब्राह्मण आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये बताइए कि जीव कौन से कर्मों से नरकों में जाता है और कौन से कर्म करने से जीव स्वर्ग में जाता है, कौन से कर्म से जीव तिर्यक योनि में पशु योनि में जाता है और कौन से कर्म करने से जीव चंद्रलोक में जाता है, कौन से कर्म करने से जीव सूर्यलोक में जाता है और कौन से कर्म करने से जीव प्रेत योनि में भटकता है, ऐसे कौन से कर्म करता है जिससे वो भगवत लोक को पाता है, और ऐसे उससे भी कौन से ऐसे कर्म है कि वो मरने के बाद लोक लोकांतर में नहीं, जीते जी जो भगवान नारायण को अनुभव है उसका अनुभव हो जाता है, ऐसे कौन से कर्म, क्या करने से जीव के शोक मोह और भय मिटते हैं और कैसे कर्म और कैसा संग करने से उसके शोक मोह और भय बढ़ते हैं। दुखों का मूल तो है शोक मोह और भय। हे संयमपुरी के अधिष्ठाता, मेरा आपके चरणों में प्रणाम है, अगर आप कृपा करें तो मेरे संशय निवृत्त होंगे। यमराज प्रसन्न हुए कि वास्तव में सरस्वती की दी हुई कन्या सरस्वती का ही रूप, इतने गूढ़ प्रश्न पूछ डाले, पूरी मानव जात के कल्याण की बात पूछ डाली। आज वट सावित्री व्यस्त है, इसलिए वो कथा सुना रहा हूं आपको कि जीव कौन से कर्मों से पशु योनियों को पाता है और ऐसे कौन से कर्म है जो मानवीय योनियों में आता है, ऐसे कौन से कर्म है कि मानवीय योनि में चिड़चिड़ा होकर रहता है और ऐसे कौन से कर्म होते हैं कि मानवीय योनि में वो प्रसन्न चित्त रहता है। ए संयमपुरी के अधिष्ठाता, प्राणियों के कर्मों के अनुसार उनकी आप व्यवस्था करने में कुशल है, आप ही बता सकते कि कौन से कर्म का क्या दंड होता है और कौन से कर्म का क्या उपहार होता है, और ऐसे कौन से कर्म है कि कर्म के बंधनों से छुड़ा देते हैं और ऐसे कौन से कर्म है कि कर्म के बंधन में फंसा देते हैं। और यहां जो कुछ भी देखा जाता है सब अपने अपने कर्म को भुगतने के लिए आते हैं, अपने अपने कर्म भोग भोग कर सब रवाना हो जाते हैं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े अक्कल वाले बुद्धिमान हैं फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति दयाजनक है, और कहीं उनसे भी कम बुद्धिमान भी ऊंचाइयों पर बैठे, कहीं बड़े बड़े पहलवान हैं मोटे ताजे फिर भी उनके कर्मों के अनुसार उनको नपातुला मिलते, और कई पतले डुबले हैं और हजारों हजारों लोगों को रोजी रोटी दे सकते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो आप ये कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म के विषय बताए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, सावित्री के ज्ञान युक्त प्रश्न सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। अश्वपति की कन्या, सत्यवाहन की पत्नी सरस्वती दत्त वो कन्या यमराज के हृदय में भी जगा करने में सफल हो गई। यमराज प्रसन्न वदन बोले कि पुत्री, विच परमात्मा सत्ता अविनाश तत्व है, जिस जिस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम हुआ है और जैसा विधान हुआ है ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था हुई। जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फिक्स कर देते हो ऐसी चलती है। मानवी मेड, मनुष्य का बनाया हुआ कंप्यूटर सिस्टमेटिक काम करता। हमने देखा लंदन में, टिकट लिया एक पाउंड की, मतलब 50 रुपए की, हमने मुसाफरी की 15 रुपए की, फिर हमने मशीन में वो टिकट डाल दी तो 15 कट कर 35 रुपए के हमारे उस पर लिखा। ये जो लोग यूरोप में गए उनके पास, उनको पता होगा प्लेटफार्म पर टीटीबीटी नहीं होता, आप कितने की टिकट लेके कितनी मुसाफरी के बाकी की, वो टिकट पर छप के आ जाता है। कंप्यूटर सिस्टम होता है ना। तो ये जैसा प्रोग्राम कंप्यूटर में फिट होता है, सिस्टमेटिक होता रहता है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता ने अपना संकल्प प्रकृति में फिट कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक एक आदमी के पीछे चित्रगुप्त या कोई यमराज भागता फिरता है, इसने ये किया उसने ये किया, अब इतना लिखो उतना काटो, नहीं। हर एक के अंतःकरण में वो कंप्यूटराइज सिस्टम सेट है। जब कुछ भला करते हो तो वो अंतरात्मा तुम्हें शुभ बुद्धि देता है, आनंद उत्साह देता है। जब अशुभ और खिन्नता होती तो समझो कि वो कर्म विकर्म है, कुकर्म है। दान देने से, शुभ करने से अंतःकरण प्रसन्न होता है तो समझ लो कि ये शुभ कर्म है, और जो कर्म करने से अंतरात्मा नालत करता है, धिक्कारता है, तो वो अशुभ कर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधम आई। दूसरे के हित, दूसरे को सुख पहुंचाने के कर्म शुभ माने जाते हैं और दूसरे का उत्पीड़न करने के कर्म अशुभ माने जाते हैं। किस कर्म से मनुष्य दीर्घजीवी बनता है और किस कर्म से मनुष्य योनि में वो रुग्ण ही रहता है। यमराज ने कहा, पुत्री, जो अगले जन्म में अथवा इस जन्म में अति विलास करते हैं वे रुग्ण ही रहते हैं, और जो संयमी और सा अनुकूल आहार व्यवहार करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए व्यवहार करता है उसके चित्त में प्रसन्नता निवास करती है और उसको देखकर दूसरे प्रसन्न होते हैं। जो अपनी खुशियों के लिए माता पिता गुरुजन शास्त्र और भगवत विधान का अवज्ञा करके भी मनमाना आचरण करके सुखी रहता है वह सुखी तो नहीं, हर्षित होता है और खिन्नता उसका पीछा नहीं छोड़ती। जो सात्विक आहार करता है, सात्विक सुमरण करता है, सात्विक चिंतन करता है, उसकी बुद्धि सत्व प्रधान होती, वो मरकर स्वर्ग में जाता है, और जिस निमित्त वो दान पुण्य करता है स्वर्ग में, उसी निमित्त के उसको भोग भी मिलते हैं। जो राजसी वृत्ति का है, धन को बढ़ाने में, यश को बढ़ाने में, भोग को बढ़ाने में, और मरने के बाद भी भोग मिले, इस प्रकार में लगता है, तो राजसी वृत्ति प्रधान व्यक्ति मरने के बाद फिर मनुष्य होता है। सात्विक प्रधान वृत्ति वाला व्यक्ति मरने के बाद देवता होता है। तामसी प्रधान, खाना पीना, किसी को न मानना न सोचना, ईश्वर को, भगवान को, माता को, पिता को, और अपना स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, वो जीते जी दुत्कार का पात्र हो जाता है, खिन्न रहता है, अशांत रहता है और अति पाप करता है तो उसको प्रकृति शरीर नहीं देती और वो प्रेत होकर भटकता है। प्रेत योनि से छुटकारा पाकर फिर नारक के दुख भोगता है और अंत में उसके कर्म के तारतम्य से ऊंट घोड़ा गधा भैंसा कुत्ता बिल्ला सुअर अपने अपने कर्मों के तारतम्य से, जैसे यहां कर्मों के तारतम्य से किसी का रहने का घर 3 करोड़ का है, किसी का 2 करोड़ का है, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 50,000 का है, और किसी का तो 1,150 का झोंपड़ा ही है, हैं सब नागरिक भारतवासी। कर्मों की तारतम्यता से यहां भी भोग में न्यूनता अधिकता है, प्रभाव में न्यूनता अधिकता है। एक व्यक्ति है राष्ट्रपति की पोस्ट से बोलता है और पूरे देश में क्या विश्व में उसकी बात फैल जाती है, और दूसरा दिन रात चिल्लाता है तो उसका बेटा ही नहीं उसकी बात मानता। जयराम जी की दिन भर मेहनत मजूरी करता है फिर भी सुख से खाना पीना और कपड़ा नहीं जुटा सकता, और वो थोड़ा सा भाषण करते जीभ को घुमाने की टेक्निक है वो तो मौज करते, उनके नाम पर 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख तो क्या 50-50 लाख और 2-2 करोड़ रुपया उनके नाम पर खर्च हो जाता है, राष्ट्रपति भवन का इसका उसका सिक्योरिटी 2-2 करोड़ रुपया साल में। तो कर्मों की तारतम्यता से बुद्धि की तारतम्यता, व्यवस्थाओं की तारतम्यता जैसे इधर दिखते से मरण काल के बाद भी होती। हे पुत्री, दीर्घजीवी और अल्पजीवी, श्रद्धाहीन जो है, शुभ कर्महीन जो है, कुकृत्यधारी अल्पजीवी होता है। कोई प्रारब्ध वेग से अल्प आयु लाया और अपना काम करके चला गया वो अलग बात है, लेकिन श्वासोश्वास लाया और श्रद्धाहीन है तो जरा जरा बात में घबरा जाएगा, जरा जरा बात में सुकड़ जाएगा, जरा जरा बात में भोगों से लालायित हो जाएगा, तो वो अकाल मृत्यु हो जाती है उसकी। और जो श्रद्धावान और सत्कर्मी है वो छोटे मोटे दुख तो क्या, बड़े बड़े भी उतार चढ़ाव आएंगे तो समझेगा कि ये दुख आया है तो मेरे पाप निवृत्त करने के लिए श्री हरि ने भेजा, ये हरि की कृपा है, और सुख आया तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ने दिया। वो सुख और दुख के भोग तो भोगता है लेकिन भगवान पर नजर होने से वो भगवान के लोक को पाता है। जो उन्मादी है, बधिर है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई उन्मादी है, कोई पागल है, ऐसा क्यों? बोले पूर्व काल के कर्मों के कारण भी ऐसा होता है और यहां असंयम के कारण अथवा किसी के चित्त की उफ के कारण भी कई लोग बहरे होते हैं। शहनशाह आलम बहरा है, जयराम जी की उफ के कृत्य के कारण कोई इस लोक में इस वक्त अशुद्ध आहार व्यवहार के कारण भी बहरे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी आदि हो जाते। जो सत्पुरुष हैं और सत्य बोलते हैं, सत्य तोलते हैं और सत्य का ही चिंतन करते हैं, सूर्य के उपासक हैं, उनकी मृत्यु के बाद वे सूर्य लोक में जाते हैं। जो सकाम भाव से शुभ कर्म करते हैं वे भोग भोगने के लिए चंद्रलोक में भी जाते हैं, हजारों वर्ष वहां रहते हैं फिर मानवी देह में आते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, यक्षों को पूजते हैं वो यक्षलोक में जाते हैं, जो प्रेतों के टूने टोटके करते कराते वो मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं, लेकिन जो भगवान को पूजते हैं स्मरण करते हैं तो भगवान के लोक में जाते हैं। हे सुकन्या सावित्री, जिनकी बुद्धि प्रखर है और कर्मों में भगवत प्रीति है, भगवान की प्रीति के निमित्त कर्म करते हैं, उनके बुद्धि में भगवान ये जिज्ञासा जगाता है कि भगवान कौन है और मैं भजन करने वाला कौन, मुक्ति क्या है और बंधन क्या है, ऐसी उनके चित्त में जागृति होती है, उनकी पुष्ट भक्ति का फल है ये कि मैं कौन हूं, भजन किसका करता हूं, भगवान के। वे भगवान के दो रूपों की उपासना करते हैं, एक भगवान की माया विशेष चैतन्य मुरली मनोहर धनुष्यधारी शंभ सदाशिव गणपति आदि भगवान के साकार रूपों की उपासना करते हैं। वे साकार रूपों की उपासना करने के फल स्वरूप मरने के बाद भगवान के लोक में जाते हैं और वर्षों तक वहां रहते हैं। जब महाप्रलय होता है और भगवान निराकार में समा जाते हैं तो भक्त भी समा जाते हैं। उन मुक्तियों में भी पांच प्रकार है, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। जैसे राजा के राज में पहुंच गए, ये हो गया सालोक्य मुक्ति। राजा के कारकुन बन गए, ये हो गया सामीप्य मुक्ति। राजा के मंत्री हो गए, ये हो गया सायुज्य मुक्ति। राजा के खास, बस राजा के गैरहाजिरी में आप ही संभाल लेते हो, छोटे भाई हो गए, ये हो गया सारूप्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति उन उन भक्तों को मिलती है अपने तारतम्य के हिसाब से। लेकिन सुकन्या, तेरे प्रश्नों पर हम बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें तात्विक प्रश्न का तात्विक उत्तर देते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के साकार रूप में है वे भक्ति प्रधान भाव प्रधान भक्त लोक लोकांतर में जाते हैं, लेकिन जिनकी तात्विक बुद्धि है, भगवान जिससे भगवान है, जीव जिससे जीव है, चित्त की वृत्तियां उठती और मिटती है, उनके साक्षी स्वभाव को जो देखता है, वो जैसे नारायण अपने शुद्ध स्वभाव में विश्रांति पाकर सारा माया का विलास देखकर अपने मायापति स्वरूप में ज्यों के त्यों है, ऐसे जो तात्विक चिंतक है, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, वे शिव जिससे शिव है, सरस्वती जिससे सरस्वती है, महादेव जिससे महादेव है, नारायण जिससे नारायण है, श्रोत्र जिससे देखते हैं, नेत्र जिससे देखते हैं, श्रोत्र जिससे सुनते हैं, मन जिससे सोचता है, बुद्धि जिससे निर्णय करती है, वो बुद्धि से परे तत्व में जग जाते हैं और यही जीवन मुक्त होकर अमरता का अनुभव करते हैं। ऐसे पुरुषों का संग व्यर्थ नहीं जाता है। और तू क्या पूछती? इतने में तो यात्रा करते कर थोड़ी यात्रा हुई, यमपुरी में पहुंचे। कथा कहती है कि देव, ये आपने उपदेश तो दिया, अब मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं विधवा होकर मृत्यु लोक में क्या करूंगी, मुझे यहीं रहने दिया जाए। सावित्री, ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा आयुष्य शेष है, जाओ तुम्हारे पिता के घर पुत्र होंगे और तुम्हारे ससुरा की आंखें ठीक होगी और उनको राज्य वापस मिलेगा। वो मेरे शुभ संकल्प से तेरे ससुरा का राज छीनने वाले राजा को स्वप्न आया और तेरे ससुरा की आंखें भी ठीक हो गई है और वो राज्य लौटाने के मूड में है, जाओ तुम सुख भोगो। बोले, वो मुझे पहचानेंगे भी तो नहीं, अब मैं अपने पति को छोड़कर, बेटी तू यहां नहीं रह सकती। बेटी ने चिंतन किया देव ऋषि नारद का कि महापुरुष है गुरुदेव, आप ही ने मंत्र दिया जो मैं यमराज से बात और ज्ञान पूछने की योग्य हूं। आपके मंत्र की और आपकी कृपा की महिमा और आपके करुणा का बदला मैं क्या चुकाऊं देव, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। नारद जी का आह्वान किया, देखते देखते नारायण 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 नारद जी प्रकट हुए। चित्रगुप्त और यमराज कहते कि सावित्री को समझाओ, महाराज वापस लौट जाए। बोले, भाई सावित्री को मैं समझाऊं, लेकिन ये तो शिव जी का मंत्र जपती है और ध्यान करती है योग करती है, इनको मैं क्या समझाऊं। अब आप इनका पति नहीं लौटा दोगे तो ये कैसे जाएगी? वकील हो तो ऐसे हो, गुरु वकील का काम भी करते हैं, असील का भी करते हैं, इष्ट देव का भी करते हैं। आप ऐसा करो कि ये तो शिव जी का मंत्र जप रही है, भगवान शिव का आवाहन करो और शिव जी सुपर पावर, वो जो कह देंगे फाइनल। शिव जी का आवाहन किया, कथा कहते शिव जी इस प्रकट, प्रभु आप ओघड़दानी, आप तो काल के काल, और ये आपके नाम का जप कर रहे हैं, योग किया है, संयम किया। ऐसी संयमी योगिनी और आपकी भक्त अगर धरती पर विधवा होकर घूमे तो फिर आपका भजन कौन करेगा? ईश्वर अगर न्यायकारी है तो फिर दीनहीन दुखी का क्या होगा? सब काम कानून से होगा तो फिर भजन का फल क्या, लागवक का फल क्या? जैसी प्रश्न। नश्वर भोग भोगने के लिए लोग नश्वर लागवक करते, लेकिन शाश्वत के साथ जब मंत्र के द्वारा लागवक हो जाती है तो शाश्वत की करुणा कृपा विशेषाने। सामान्य रूप से तो प्रकाश सबको मिलता, लेकिन बिलोरी कांच रखे और विशेष प्रकाश न मिले तो फिर बिलोरी कांच रखने का मतलब क्या? ये तो साधारण जीवन नहीं जीती थी, खान पान हा हा ही, ये तो आपका जप करती थी, संयम से जीती थी, एकाग्र होती थी। यमराज क्या बात है, यमराज ने कहा इसके पति की आयुष्य पूरी हो गई। बोले पूरी हो गई तो 100 साल हमारे आयुष्य में से दे दो, हमारे पास क्या टूटा है। और सावित्री का यश रहे नाम रहे, इतनी भक्ति की है। नाराजी तुम चिंता ना करो, ये तुम्हारी भक्त है, मेरी भक्त है, तुम्हारी भी भक्त है। जो संत के भक्त वो भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त वो संत के भक्त। नाराजी और कुछ कहो। तब नाराजी कहते कि भगवान सचमुच आप शंभ सदाशिव हैं। बोले नाथ, सावित्री को कहा प्रदक्षिणा कर ले, इष्ट देव आए। मंद मंद शिवजी का आशीर्वाद मुस्कुराते हुए मिला और सत्यवान का, उन्हें आयुष्य पूरी हो गई तो आयुष्य बढ़ाकर सूक्ष्म शरीर लेकर आई, जहां उसका पति का शव पड़ा था, अपना शरीर समाधि में पड़ा था, समाधि वाले शरीर में घुसकर फिर पति के शरीर को सूक्ष्म दृष्टि से डाला और करवट लेकर उठा सत्यवान। अरे सैया, मुझे क्या हो गया था, नींद आ गई थी क्या? क्या? हाँ आप थके थे ना, नींद आ गई थी। ऐसा नहीं कि तू मरी गयो तो अल्या। अबे तू मर गया था, खुदा की कसम, मैं नहीं होती तो तेरे को जिंदा कौन करने वाला था। ऐसा नहीं कहती, सुकन्या थी, सत्संगी थी, तप के बल से आई थी, शुद्ध आत्मा थी। हाँ पतिदेव, यूं सावधान होकर चले, इतने में तो रथ आ गया। पिता को आंखें मिल गई, राज्य मिल गया, और अपने सुपुत्र को फलाने वन में भीलों के पास भेजा था, और वो भीलों के मुखिया के पास है, इस दाई ने कान में बात कही थी। तो भीलों का मुखिया मर गया, लेकिन वो मुखी के घर में जो बालक है वो सत्यवान, भील सत्यवान के नाम से है, और फिर जांच करके उनको ले आओ। जांच किया तो जंगल में गए, तो जंगल में रथ पहुंचा और आकर प्रणाम किया। सत्यवान कहते कि ये क्यों चंदन की लकड़ी लेते, इसीलिए पकड़ने तो नहीं आए? बोले नहीं नहीं पतिदेव, ये पकड़ने नहीं आए, आप वास्तव में भील के पुत्र नहीं है, आप वास्तव में राजकुमार है, आप वास्तव में राजकुमार है, तो आप वास्तव में राजा है। ऐसे ये जीवात्मा भी अहंकार रूपी भील का बेटा नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्मास्मि रूपी परमात्मा का बेटा है। मंत्री ने प्रणाम किया और उसी रथ में बैठकर गए। वो चंदन की लकड़ी अश्वपति राजा के यहां डालने जाना था, अब रथ में लकड़ी ले जा रहे हैं। राजा दंग रह गया। राजा ने खबर सुनी कि पास के राज का रथ आया है, क्या बात है, क्या कारण है, क्या है? मंत्री मंत्री राजा स्वयं आया तो देखा कि वो राजकुमार के साथ और मेरी बेटी सावित्री। बोले क्या किया तूने, ये तेरे को तो मैंने भील पति दिया, क्या तूने उसको छोड़कर किसी भोग विलास के कारण क्या है इसको पटाया? बोले पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं, संसारी तुच्छ भोगों के लिए मैं अपना दिन बदलने वाली नहीं, ये आपके जमाई राज है, जो लकड़ियां डालते थे कठियारे के रूप में वही राजकुमार ये है। और सारी बात सुनाई। पिता ने कहा कि बेटी तूने सत्य लिखा था, सुखे सुवे संसार मां, भाग्यवंत कुंभार, चिंता राखी चाकड़े धन्य धन्य अवतारी, मेरी गलती तूने संवारी और तूने लिखा था धन्यवाद लिखनार ने खरे खरो कुंभार, जे घर नार सुलक्षणी सो सुखे सुनार, कच्छा नारे को भी तूने राजा बना दिया और अमर बना दिया। पुरुषार्थ में बड़ी ताकत है, भगवत भाव में, भगवत जप में, गुरु मंत्र में, इन देवी शुभों में परिणाम शुभ आता है।